पद विधाई मेरे सदृश तत् श्री भगवान के गुणा भौतिक प्रकृति के गुणों का सर्गा सृष्टि करने वाली माया अपनी शक्ति से ना कभी नहीं ज्ञायते समझे जाते हैं मोहिता मोहग्रस्त चित्ता जिनके मन वर्तमभी रास्ता तेभ्या उनको नमः नमस्कार वीरयसा करेभ्यः जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है हे भगवान मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूं फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूं जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विरोधी और आश्चर्यजनक लगती है तात्पर्य भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं बेचारा क्षुद्र मानव इस कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है अतः श्रीजीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यकलापों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता उनकी व्याख्या असंभव है भगवान गोलोक वृंदावन में निरंतर श्री कृष्ण के रूप में स्थित हैं उसके साथ साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है यथा राम नरसिंह बरा तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार संकर्षण बलदेव के विस्तार हैं और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य हैं इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं ईश्वराणाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् श्री भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार श्री भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला है किंतु कृष्ण आदि भगवान है ईश्वराणाम शब्द बहुवचन है अतः इसे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं और इन कार्यों को विरोधी मानने लगते हैं यद्यपि ये है नहीं भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक के घर में वस्तु चुरा लाओ किंतु उसी समय वह गृहस्थ कहता है चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं किंतु हमें जान लेना चाहिए कि श्री भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोवेग से भगवान से में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुष्कंध के अंतर्गत महाराज पृथ्वी पर कुपित होना शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुष भुक्ते गुणां षोडशषोडशात्मकम् सोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमहानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादयसुखगाय जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और माता पृथ्वी यह बात नहीं समझ पा रही थी कि महाराज पृथु जो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं वे उन पर प्रहार क्यों करना चाहते हैं जो कि एक गाय का रूप धारण की थी। तो अपना कंक्लूजन इस श्लोक में दे रही है और कंक्लूजन यह दे रही है कि भगवान और भगवान के भक्तों का जो लीला है वह सांसारिक व्यक्तियों के समझ के परे है। इस अध्याय का इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि भगवान और भगवान के भक्तों का जो कार्यकलाप है वह सांसारिक व्यक्तियों के समझ से परे है। कारण बतलाई है कि क्यों वे परे हैं और वह कारण यह है कि भगवान के त्रिगुणात्मक सृष्टि का जो माया रचना करती है, उसी माया के द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है। इसीलिए सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। श्री पाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि ना भवेद गायम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। अत श्री कृष्ण नामादि ना भवेद गायम इंद्रिय। हमारी जो इंद्रियां हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्लंट सेंसेज, ये भौतिक है। और भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान का विलास, ये सब कैसा है? यह दिव्य है। जन्मा कर्मा च मे दिव्यम, ये दिव्य है। और हमारी इंद्रियां बहुत दिव्य है, यानी भौतिक है। तो स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि भौतिक इंद्रियों से उन दिव्य पुरुष को कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे गायम इंद्रिय। इंद्रियों के पकड़ से ये बाहर का चीज है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला इत्यादि का चिंतन, इससे परे का है। लेकिन इन इंद्रियों में शक्ति है उसे समझने का। कैसे? सेवन मुखे हैं जीवादौ। यदि ये इंद्रियां सेवा उन्मुख हो जाए, सेवा परत हो जाए। आज हमारी जो इंद्रियां हैं वह इंद्रिय तृप्ति उन्मुख है। जितनी इंद्रियां हैं वो सेवन मुख हो जाए, भगवान की सेवा के लिए उन्मुख हो जाए, भगवान की सेवा तत्पर हो जाए, तब कृष्ण को समझ सकते हैं। जैसे आंख है, आंख हमेशा तत्पर रहे कि मैं भगवान का दर्शन करूं। कान है, कान हमेशा तत्पर है कि मैं भगवान का कथा सुनूं, भगवान का नाम सुनूं। जिह्वा है, हमेशा तत्पर है कि मैं भगवान का प्रसाद ही खाऊं और कुछ न खाऊं। और तत्पर है कि हमेशा मैं भगवान का नाम लेते रहूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाणी है, वाणी हमेशा तत्पर है कि मैं हमेशा कृष्ण का गुणानुवाद करता रहूं। मन है, हमें यह तत्पर है कि कृष्ण का ही मैं चिंतन करता रहूं। और इस प्रकार से जितनी ग्रॉस इंद्रियां हैं वो भी कृष्ण की सेवा में तत्पर रहे। सेवन मुखे हैं जिह्वादौ, सेवन उन्मुख। और कहां से? जिह्वादौ, जिह्वा आदि के द्वारा। जिह्वा पर विशेष जोर दिया गया है। जो बात रूप गोस्वामी कहते हैं वही बात भक्ति विनोद ठाकुर भी कहे हैं, तार मुद्दे जिह्वा आती लोहमय सुडूरमती। जिह्वा का डायरेक्ट कनेक्शन है मन से। ये परंपरा सिस्टम, परंपरा से ठीक वही बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी। जो बात कहे हैं वही बात कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो जिह्वा दौ, जिह्वा आदि के द्वारा। और जिह्वा का दो काम है, स्वाद लेना और उच्चारण करना। तो स्वाद लें तो भगवत प्रसाद का स्वाद लें, और उच्चारण करें तो भगवत नाम का उच्चारण करें। जय श्री गौर निदाय की जय, राधारास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो भगवान नाम उच्चारण कर करके, भगवत प्रसाद पा करके, धीरे धीरे हम सब इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं। तो यह साधन है भगवान में लगने का, अन्यथा कोई साधन नहीं है। तो जो व्यक्ति चाहता है, जो सीरियस है भगवत भक्ति में, जो कृष्ण कांसफ होना चाहता है, उसको स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां दिन में कितना घंटा भगवान के सेवा में लगी है। जब तक से हम कृष्ण को समझेंगे नहीं, कृष्ण के लीलाओं को समझेंगे नहीं, उनके नाम परिकर धाम को समझेंगे नहीं, तब तक से कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। और कृष्ण को प्राप्त करने का सरल तरीका है अपने को ऑब्जर्व करना कि हमारी इंद्रियां कितनी मात्रा में भगवान की सेवा में लगी हुई है और कितनी मात्रा में संसार की सेवा में इंद्रिय तृप्ति में लगी है, खाने में, सोने में, संतान उत्पन्न करने में, रक्षा करने में, इत्यादि में। यदि हम बैलेंस कर सकते हैं तो हम भगवत धाम जाने के रिसिपिएंट हैं, और नहीं तो इस संसार में भोग भोग। तो यहां पर माता पृथ्वी शुरू करती हैं, शब्द है नूनम। नूनम का मतलब होता है निश्चयात्मक शब्द है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान को समझने का या भक्तों को समझने का। एकमात्र शॉर्टकट है सेवा के द्वारा। माता कुंती भी कुछ ऐसी ही बात कहती हैं, कहती है नावेद कश्चित भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य निराम्बिदम्बनम् न यस्य कश्चिदैतोऽपि कर्हचित् देशस्य यस्मिन् विषमामतिं नृणाम्। हे भगवान, देखने में बड़ा कंट्रडिक्टरी लगता है, हालांकि आपका न तो कोई द्वेषी है और न तो कोई प्रिय है, आपके लिए सब समान है, लेकिन आपकी जो लीलाएं हैं ऐसी दिखाई पड़ती है कि कभी कभी आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, और जब शत्रुओं को मारते हैं, असुरों को मारते हैं, तो लगता है कि वे आपके द्वेषी हैं। तो ये जो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ने का कारण क्या है? कहती है कि विषम मति निराम, लोगों की मति जो है वो विषम दिखाई पड़ती है। क्यों? कहते हैं कि यह विडंबना है, बड़ा बिल्डरिंग है, ये समझ के परे की बात है, भगवान की लीला समझ के परे की बात है। और वही बात यहां पर भी कहा जाता है। माता पृथ्वी कहती हैं कि ये सब भ्रमित करने वाली हैं, और कारण क्या है? क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, इसलिए कहते हैं नूनम, निसंदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान और भगवान के भक्तों का कार्यकलाप जो है वह समझ से परे की बात है। प्रश्न उठता है कि भगवान का प्रार्थना कर रही थी तो भक्तों का बीच में काम बात कहां से आ गया? यहां पर स्पेशली भक्तों को प्रणाम की है, कहती हैं तेभ्यो नमो वीरेशस करेभ्यो। ये जो बात है वीरजस करेभ्यो, ये भक्तों के लिए आया हुआ है। जो वीर शब्द है वह भक्तों के लिए आया हुआ है। वीराणाम जितेन्द्रियाणाम यश कुर्वन्ति एतेभ्य, जो अपने इंद्रियों को बस में किए होता है वह वीर कहलाता है। उपदेशामृत का पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वीरा, राइट, वीर शब्द है एतान बेगान जो बेसहित धीरा धीरा, अच्छा धीरा आया हुआ है, धीरा और बीरा दोनों एक ही शब्द है। बीरा सर्वात्मपिमाम पृथ्वीम सुशिष्यात्, धीरा और बीरा। तो बीराणाम मतलब जितेन्द्रियाणाम, जो अपने इंद्रियों को वश में किए हैं, इसलिए जो कार्य करते हैं इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है, इंद्रियों को भगवान में लगा दिए हैं। और जो लोग इंद्रियों को भगवान में लगा दिए हैं वही भगवान को समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का क्रियाकलाप जो होता है सामान्य लोग की समझ से परे के, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान जाने को, वैष्णव का क्रिया मुद्रा बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे भगवान का वैसे ही वैष्णव का भी। तो नूनम, नूनम ये दोनों के निश्चित ही, भगवान का भी और भक्तों का भी, दोनों का कार्यकलाप समझ से परे है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका में जब लोग सुनते थे कि हमारे भक्त लोग मांसाहार नहीं करते हैं, अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं इत्यादि, तो उन लोगों को आश्चर्य था कि तब कैसे रह पाते हैं, कैसे जी पाते हैं, उन लोगों के समझ से परे। इंडिया में भी लोग जब हम कहते हैं चाय कभी भी नहीं पीते हैं, अरे चाय कभी नहीं आप लोग पीते हैं, उन लोगों का आश्चर्य से परे की बात है, कह रहे चाय कभी भी नहीं पीते हैं, के लिए जीवन है चाय कॉफी। लेकिन भगवान के जो भक्त लोग हैं उनका सब कार्यकलाप आश्चर्यमयी है, क्योंकि आत्मा आश्चर्यमयी है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य रूप से देखते हैं, कुछ लोग इसका वर्णन आश्चर्य रूप से करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो जो सेल्फ रियलाइज है उनके कार्यकलाप आश्चर्यमयी है। भगवान का तो है ही, भक्तों का इसलिए नूनम निश्चित है, ये परे बात है। जनैर इहित ईश्वराणाम, हे भगवान आपका जो ये कार्यकलाप है सामान्य लोगों के लिए निस्संदेह ही समझ से परे है। पड़े हैं तो उसका व्याख्या करते हुए कहते हैं क्योंकि संसार में सब लोग आपके माया के द्वारा मोहित हैं। अस्मद विधई सदगुण स्वर्ग माया, जो सृष्टि हुई है माया के द्वारा सृष्टि है। पृथ्वी अपनों को भी कहती है कि मेरा भी सृष्टि माया से हुआ है। हम लोगों को जितना देह मिला हुआ है ये देह माया का दिया हुआ है, और हम लोग माया के रियल फॉलोअर हैं। हम लोग नमक हरामी नहीं करते हैं, बेचारी माया ने हम लोगों को देह दिया है तो उसका सेवा करना चाहिए ना, नमक हरामी नहीं करना चाहिए। तो माया हम लोगों को देह दिया है। कृष्ण भोली से ही जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया तार झापटिया धरे। कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसारे दुख। देह देती है माया, भूमिरा प्रलोभायु खम मनोबुद्धिर एव च अहंकारमित मे भिन्ना प्रकृति रसदा, मे भिन्ना प्रकृति रसदा, भगवान की भिन्ना प्रकृति है माया के द्वारा एक प्रदत्त है। तो माया के द्वारा होने के चलते हम लोग माया का सेवा करते हैं। पृथ्वी कहती है मैं भी उसी में से हूं, जैसे जनई ऊपर शब्द आया जनई मन समान लव, और नीचे आया अस्मद विधई यानी मेरे सदृश, यानी मैं भी उसी में हूं। तो पृथ्वी की भी रचना जो हुई है माया के द्वारा, भूमि रा पनलो वायु खम, भूमि भी उसी में से है। तो माया में मोहित होकर के, यानी स्त्री पुत्र परिवार समाज, इसी में लोग भ्रमित रहते हैं, जिसके चलते भगवान के दिव्य लीलाओं को वे लोग समझ नहीं पाते हैं। न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमानी। चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि, चेतना, सब कुछ भ्रमित हो जाता है। विमोहित, बिल्कुल मोहित रहते हैं माया के द्वारा। हमारा मन मोहित है, भगवान में नहीं लगा हुआ है। चित्त बुद्धि भगवान में नहीं लगाया है, और दिल भी भगवान में नहीं लगा हुआ है। तीनों को भगवान में लगाना है। भगवान को समझना हो तो भगवान में तीनों को लगाना है। मन को भगवान में लगाना है, सवई मन कृष्ण पदार अविंदयो। मन को भगवान में लगाना है कैसे? भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चित्त को भगवान में लगाना है, यानी बुद्धि को भगवान में लगाना है। बुद्धि को भगवान में लगाने का मतलब होता है कि और जितनी इंद्रियां हैं वो किसी अन्य कार्य में न लगे, यह देखभाल करना बुद्धि का काम है। बुद्धि ही एक है जो बतला सकती है क्या सही है और क्या गलत है। ये टेम्बल कमांडर और टेम्बल मैनेजर वही बताएंगे, ये बुद्धि बतलाएगी। सबसे बड़ा टेम्बल कमांडर है बुद्धि हम लोगों के पास, तो बुद्धि बतला सकती है। हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर हम करते हैं। क्यों करते हैं? माया के पलड़ा में पड़े हुए हैं इसलिए। तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। बुद्धि की गार्ड के द्वारा गाइडित करना चाहिए अपने जीवन को, भक्ति रूपी जीवन को। और चित्त का तीसरा अर्थ है दिल, हृदय। हृदय को शुद्ध करने के लिए हरि कथा सुनना, सत्संग करना, इस प्रकार से दिल शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान वहां पर विराजमान रहेंगे। अभी जो समय है, परिस्थितियां हैं, मोहित चित्त वर्तमानी, वर्तमान भी हम लोगों का चित्त जो है वह मोहित है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीजीव गोस्वामी एक बात को उद्घृत करते हैं। वे कहते हैं, श्रीजीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। भगवान का कार्य कला दिव्य है, स्वीकार कर लेना। स्वीकार करने का मतलब श्रद्धा होना। भगवान के कार्यकलापों को हम श्रद्धा से जान सकते हैं, तर्क के द्वारा नहीं जान सकते हैं, या अन्य कोई साधन नहीं है समझने का। एकमात्र श्रद्धा ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भगवान के कार्यकलापों को हम लोग समझ सकते हैं। भगवान किस प्रकार से गोलोक धाम में निवास करने वाले हैं, उनका धाम है गोलोक धाम, और वहां से वे विस्तार करते हैं अन्य रूपों में। ईश्वराणाम, ईश्वर एक ही है लेकिन अन्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। इसलिए यहां पर शब्द आया हुआ है ईश्वराणाम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को बतलाए हैं कि ईश्वराणाम बहुवचन है, इसका मतलब नहीं समझे कि बहुत से ईश्वर हैं। ईश्वर एक ही है लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य कलापों को करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं। रामादि मूर्ति तो कला निष्ठन, राम इत्यादि, राम बरा नरसिंह इत्यादि उनकी कलाएं हैं। एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडियंती जुगे जुगे। भगवान एक है कृष्ण, और जितने भी अवतार हैं वे उनके कला हैं। तो ईश्वराराम का मतलब उनके जितनी कलाएं हैं, और कैसे उन कलाओं के द्वारा भगवान आते आते प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। हम लोग एक साथ में एक चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में 13वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि हम लोग एक स्थित देह में हैं, देह के कार्यकलाप को हम समझ सकते हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो सबके देह के कार्यकलाप को समझ सकते हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। हम लोग एक साथ में एक काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक साथ में अनेक कार्य कर सकते हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है। मानव मस्तिष्क कैसे समझ सकता है। समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान कई एक अवतार एक साथ लिए थे, कच्छप के रूप में कच्छप अवतार लिए थे जहां पर वो पर्वत स्थित था, बासुकीनाग जहां देवता लोग खींच रहे थे वहां पर भगवान थे, और मंदराचल पर्वत को भगवान बैलेंस किए थे ऊपर बैठ गए थे। उसी अवतार में भगवान मोहिनी का रूप धारण कर करके आए, उसी अवतार उसी लीला में भगवान धन्वंतरी का रूप धारण करके आए। तो एक साथ में पांच, एक लीला में पांच अवतार भगवान ले लिए। तो भगवान की लीलाएं वास्तव में विडंबना है, मन को भ्रमित करने वाला है, मन को भ्रमित करने वाला है। और ऐसे लीलाओं को समझ सकते हैं तो समझने का साधन एकमात्र है, वह है वीरजस करे व्यह, साधुओं की संगति के द्वारा, सत्संग के द्वारा। इसलिए ऐसे साधुओं को माता पृथ्वी प्रणाम कर रही है। जो साधु लोग भगवान के मोहग्रस्त करने वाले लीलाओं को समझते हैं और लोगों को समझाते हैं, जो जितना हो सके उतना हमें साधुओं का संगति करना चाहिए। तो साधु को समझ लेंगे तो भगवान को समझ सकते हैं। सरल तरीका है, क्योंकि भगवान साधुओं के बस में होते हैं। साधु लोग जानते हैं कैसे भगवान को बस में किया जा सकता है। बताया गया है, बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय पति यथा। भगवान कहते, नवम स्कंद भगवान कहते हैं, बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या, मेरे भक्त लोग मुझको वैसे ही अपने हाथ में कर लेते हैं, अपने वशीभूत कर लेते हैं। सत स्त्री पति यथा, जिस प्रकार से सती स्त्री अपने पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से जो सत्पुरुष हैं वे भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, और भगवान से कुछ भी कराते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को ऐसे बस में की थी, कान पकड़ रही थी उनका, आज्ञा पालन करा रही थी। भगवान डर रहे थे, माता कुंती इसी दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि हाय हाय, जिन भगवान से भय भी कांपता है वे भगवान यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके एक सामान्य बालक के समान रो रहे हैं। विडंबना नहीं है तो और क्या है। वशीकृता, भगवान के भक्त ही भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों का सहारा लेना चाहिए। सब शास्त्र कहता है साधु संग, साधु संग, सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, जितना समय हो सके सत्संग करना चाहिए, क्योंकि साधुओं की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। अन्यथा कितना भी चालबाजी कोई करे, चलाकी करे, भगवान को नहीं समझ। इसलिए माता कुंती यहां पर नूनम शब्द कहती है, निश्चय कोई दो राय नहीं है। तो दो चीज है, एक तो साधुओं का संगति भगवान के लीला को समझने के लिए, भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए साधुओं का संगति, और दूसरा अपने आप को अलर्ट रखना है कि हम कितना मात्रा में भगवान की सेवा में लगे हैं, हमारी इंद्रियां कितना रूप से भगवान की सेवा में लगी हुई है। दिन में कितना घंटा हम सो रहे हैं, कितना घंटा हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा का मतलब भक्ति होता है और भगवान को जानने का तरीका है भक्ति। भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस्तस्मि तत्त्वतः। मैं जैसा हूं कोई जान सकता है तत्व से, तो कैसे जान सकता है? भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा। भगवान जैसे हैं यथा रूप में, एज इट इज कृष्ण को कोई समझ सकता है तो भक्ति के द्वारा। और भक्ति प्राप्त होती है भक्तों के संगति से, और नहीं तो भगवान की लीला विडंबना ही रह जाएगी। प्रभुपाद उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो चोर और सेठ का। प्रभुपाद जी लेक्चर में दिया करते थे कि भगवान कभी कभी परेशान हो जाते हैं। चोर कहता है कि भगवान मैं उसके घर में चोरी करने जा रहा हूं, पकड़े ना जाऊं। और वो व्यक्ति सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता, भगवान देखना कोई चोर ना हमारे पास आ जाए। तो चोर भी प्रार्थना कर रहा है और जिसे घर में चोरी करने जा रहा है वो घर का स्वामी भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान धर्म संगत पाया तो मैं किसका पक्ष लूं, मैं किसका पक्ष लूं, चोर का पक्ष लूं कि उसका पक्ष लूं? किसका पक्ष लेंगे शाह जी? यदि आप भगवान होते तो क्या करते हैं? किसका पक्ष आप लेते हैं, चोर का कि मालिक का? ये भी विडंबना है, इसका उत्तर भी नहीं है, ये भी विडंबना है, मति को भ्रमित करने वाली है। अब देखिए ना, हम दोनों आदमी प्रार्थना करने भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, चोर भी प्रार्थना कर रहे हैं और मालिक भी, और भगवान किसका पक्ष लेंगे? माता कुंती ने विषमाम मतिन्द्रणाम, कैसी दुविधा का दुविधाजनक वस्तु है। भगवान दुविधा में पड़ जाए, हम लोग दुविधा में पड़ जाएंगे भाई किसका पक्ष लें, लेकिन भगवान दुविधा में नहीं पड़ते हैं। भगवान स्पष्ट एक लाइन में कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा काम है और फल देना मेरा काम है। चोर चोरी करता है तो चोरी का फल क्या होता है? पाप, पाप का फल दुख होता है। इसको यदि हम लोग डिस्कस करें, इस बात को समझने का प्रयास करें, तो वास्तव में सामान्य बुद्धि से ये परे की बात है कि चोर भी न पकड़ा जाए और चोरी भी हो जाए। यानी वो चोरी करने जा रहा हो भगवान से प्रार्थना करता है, नहीं चोर चोर भी न पकड़ा जाए और चोरी भी ना हो, ही ना? नहीं नहीं, चोर चोरी भी कर ले और चोरी न भी हो, यही बात है ना। प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं, चोर के हृदय का परमात्मा कहता है, यानी संशम करता है। चोर कहता है कि मैं चोरी करना है, भगवान कहते ठीक चोरी कर लो कोई बात नहीं, भगवान का संशनिंग अथॉरिटी है, संशन करते हैं। कहता है जाओ और अमुक के घर से वस्तु चुरा लाओ। जब भगवान संशन करते हैं तब बुद्धि काम करता है, क्योंकि बुद्धि का भगवान से डायरेक्ट संबंध है। यदि भगवान संशन न करेंगे तो बुद्धि नहीं समझेंगे किसके घर में चोरी करना है, ना जैसे घर में चोरी करना किस घर में चोरी करना है। जब भगवान संशन करेंगे तब पता चलेगा यहाँ पर कौन धनी है, घर में जाने का तरीका क्या है, सब कुछ बुद्धि आएगा जब भगवान संशन करेंगे तब। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर में वस्तु चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ कहता है, चोरों तासिन लगाने वालों से होशियार रहो। भगवान वहां पर गाइड करते हैं, देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है, ये उत्तर है, सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से श्री भगवान में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। तो ये चोर और सेठ दोनों भगवान का शरण ले लेंगे, सही है भगवान का शरण लेंगे, तब दोनों शांतिपूर्वक हो जाएंगे। जब चोर शरण लेगा तो भगवान बुद्धि दे देंगे कि भाई चोरी मत करो, चोरी ऐसा चीज नहीं है, तो चोरी नहीं करेगा। और सेठ यदि वास्तव में भगवान का शरण ले लेगा तो भगवान कहते हैं योग क्षेम वहां में, हम जो है उसका मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो ला करके मैं देता हूं। तो भगवान जब रक्षा करें मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, तो कौन क्या कर सकता है। कृष्ण यदि रक्षक हो तो चोर चोरी करेगा, चोर चोरी नहीं करेगा। और यदि करना, यदि वो वास्तव में भक्त है लेकिन चोर है, वो चोरी करना ही चाहता है, तो भगवान उसको ऐसा बन जाओ तुम चोरी कर लो, वो चोरी कर भी लेगा, जब सेठ उठेगा तो घर में जो था वही रहेगा। तो भगवान अनंत है ना, उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो चोर भी खुश हो गया और सेठ भी खुश हो गया, दोनों खुश हो गए। चोर ने प्रार्थना किया कि मैं चोरी करूं और पकड़ा ना जाऊं, तो भगवान कहे ठीक है चोरी कर लो, पकड़े नहीं जाओगे। और सामान चोर लेकर चला भी गया। और सेठ ने प्रार्थना किया कि भगवान मेरा सामान चोर चोरी ना करने पावे, जब सेठ उठा उसका सामान वहीं का वहीं है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान की लीला को समझना ये विडंबना है, मति को भ्रमित करने वाली है। सामान्य लोगों के लिए जनैर इतम ईश्वराणाम, भगवान के लीला को निस्संदेह ही समझना कठिन, भगवान और भक्तों की लीला को। लेकिन जो भक्तों के शरण में रहता है वो भगवान के लीला को समझ सकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के शरण में हमें हमेशा रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको हम कितना मात्रा में पालन कर रहे हैं। अपना बुद्धि लगाना शुरू करेंगे सब कुछ एक्सपॉयल कर देंगे। प्रभुपाद कहे हैं डू एज आई हैव सेड, जैसा मैं कहा हूं वैसा ही करो। इफ यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और यूज योर इंटेलिजेंस विल स्पॉइल एवरीथिंग, ये प्रभुपाद का वर्डिंग है कि जैसा मैं कहा हूं वैसा करोगे तो सब ठीक रहेगा, अपना बुद्धि लगाओगे तो सब कुछ स्पॉइल कर दोगे। तो हम लोगों को अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, हम लोगों को शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण करना चाहिए और उनके द्वारा बतलाए गए प्रशस्त मार्गों पर चलना चाहिए जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान को देने का शक्ति यदि है किसी में तो भक्तों में। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा स्वकति आछे, केवल भक्तों की ही शक्ति है कि वो कृष्ण को दे सकते हैं। तो इस श्लोक का सारांश इस प्रकार से है, माता पृथ्वी तीन बात बतला रही हैं। एक तो बात यह बतला रही हैं कि सामान्य लोग हे भगवान आपके और आपके भक्तों के लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, फिर तो आपका कहना ही क्या है। दूसरा बात कारण क्या है, कारण यह है कि आपके माया के द्वारा जो इस संसार रचित हुआ है उस माया के मोह में पड़े हुए हैं, माया से भ्रमित हैं। और तीसरा बात इन लीलाओं को वास्तव में कोई समझ सकता है तो वह भक्तों के शरण में जाए और ऐसे भक्तों को माता पृथ्वी प्रणाम करते भ्यो नमः वीर सस्करे भ्यो, वैसे भक्तों को माता पृथ्वी प्रणाम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई बात, आज का श्लोक क्लियर हो गया। तो यही समाप्त मैं करूंगा। किसी को कोई कमेंट्री, कोई टीका टिप्पणी है तो बताइए। यस माइक। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि शरीर जो है वो माया देती है, तो
हाँ क्या बोला,
तो देह माया देती है ऐसा आपने कहा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सनेही, तो वो कहते हैं कि ईश देता है देह, और आप कहते हैं माया, तो इसको जरा क्लियर कर।
ये समझने की बात है, वो माया है, माया किसकी है? माया तो भगवान की है ना।
माया भ्रमित करती है, माया शरीर नहीं देती है।
नहीं, माया ही देती है। ये संसार जो रचना हुआ है भगवान रचना नहीं की, भगवान का काम ना कोई नहीं है क्या? भगवान केवल भक्तों हाथ में विहार करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। ये देह देने का काम जो है वो माया का काम है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, करते हैं क्रमाणानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्नते। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ये सब निर्मित होता है। यहां तक कार्यकलाप भी प्रकृति कराती है, सतगुण रजोगुण और तमोगुण, ये माया के द्वारा प्रदत्त दे है। ये जो पृथ्वी हवा आकाश अग्नि और जो जल है, ये जो पांच तत्व हैं, ये माया के द्वारा निर्मित है। कैसे है ना, कैसे माया निर्मित, कैसे नहीं नहीं रामायण में है, माया भगवान इससे परे हैं लेकिन माया के द्वारा निर्मित देह है। एनीवे, देह माया के द्वारा दी गई है, माया के द्वारा प्रदत्त है। ब्रह्मा जी इसको जुगाड़ बैठाते हैं कि भगवान, जब भगवान इस पर दृष्टिपात जरूर करते हैं, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन किया गया है कि जो महातत्व है, ये महातत्व रहता है जब स्लीपिंग अवस्था में रहता है, और जो भगवान काल के द्वारा प्रचोदित करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो कुछ खलबली मचता है, और खलबली मचता है तो कुछ कार्य होना शुरू होता है। तो माया के कई एक शब्द हैं। माया का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है मा, मतलब जो दिखाई पड़े, और या मतलब
जो नहीं,
जो है नहीं, दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं, इसलिए माया है। लेकिन भगवान जो दिखाई पड़ते हैं और हैं भी, इसलिए भगवान है। तो माया के द्वारा ये दिखाई पड़ रहा संसार का सब वस्तुएं सब कुछ, लेकिन स्वप्नवत है, सत्य नहीं है, ये सपने के समान है, परिवर्तनशील है। भगवान कहते माया अधक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, माया अधक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति है, ये मेरी माया है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन मैं माया कार्य करती है। माया अधक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, चर अचर का जो निर्माण होता है, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। माया भी है लेकिन भिन्न प्रकृति, भिन्न है, अलग है, डायरेक्टली भगवान इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब टेम्पल का असीम प्रभु टेम्पल कमांडर है, सभी भक्तों को मंगला आरती में लाना इनका काम है, लेकिन ये कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ में, समझ रहे हैं ना?
वो देह माया देती है, इसका ये प्रश्न है मेरा।
माया को भगवान उतना अधिकार है माया को देने का।
और आपने कहा कि मन को जो है, बुद्धि को जो है माया, माया वो करती है, माया भ्रमित करती है, वो ठीक है, लेकिन मन जो है वो बुद्धि को जो करना चाहता है वो नहीं करने देता।
नहीं, अब ये देखना पड़ेगा कि इस जितने भी हैं बुद्धिमान, ये सब आत्मा को सुख देने के लिए यहां पर आए हैं। यदि आत्मा कुछ करना चाहता है और मन के द्वारा जो संसार में फंस चुका है, मांस खाना चाहता है, सुबुद्धि कभी अलाउ नहीं करेगा मांस खाने के लिए, लेकिन कुबुद्धि अलाउ कर देगा, हाँ ठीक कोई बात नहीं चलो खा लो। तो ये आत्मा के संतुष्टि के लिए है, ये सब ये भी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे देह को लेना देना नहीं है, ये प्राप्त हुआ है क्योंकि आनंद होना चाहते हैं इसलिए। वैसे ही मन बुद्धि अहंकार का जो देह है वो सूक्ष्म देह है, वो भी भौतिक है, वो भी माया के द्वारा प्रदत्त है। ये देह भी माया के द्वारा प्रदत्त है और वो मन बुद्धि अहंकार वाला देह वो भी। जब आत्मा शुद्ध अवस्था में रहता है उसे मुक्ति कहते हैं, और मुक्ति का अर्थ होता है इत्लान्यता रूपेण स्वरूपेण अव्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होने की क्रिया को मुक्ति कहते हैं। और अपना जो स्वरूप है वह जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का दास है। जो कृष्ण का सेवा करने लगता है उस पर माया का अधिकार नहीं होता है, उस देह पर माया का अधिकार नहीं होता है। माया के द्वारा प्राप्त होने के बावजूद भी उसके सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु और आचार्य का जो देह है उस देह को भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, ये पत्थर ईंटे का बना हुआ है, ये भी माया के द्वारा, माया का मतलब है संसार, इस संसार का, इस संसार का है, लेकिन इस संसार भगवान के सेवा में लग गया है इसलिए संसार का नहीं है। ये पूजनीय है, ये मंदिर है, लोग जूता बाहर निकाल देते हैं, पूजनीय है, भगवान का हो गया।
प्रश्न ये है कि मन बुद्धि कोई काम करने जाती है, वो जानती है, बुद्धि जानती है कि ये काम गलत है ये सही है, लेकिन उसको वो काम नहीं करने देता, वो कौन है? वो मन है ना?
नहीं देखिए, बुद्धि हम लोगों के पास तो है नहीं, बुद्धि दी जाती है, ठीक है ना, बुद्धि दी जाती है। साधुओं का संगति करोगे तो अच्छा बुद्धि दी जाएगी, जब अच्छा बुद्धि होगा तब मन कुछ खराब काम करना चाहेगा तो बोले ये काम मत करो। तो ये खराब बुद्धि है, संग रहेगा दुष्कर्मियों का, इंद्रिय तृप्ति करने वालों का, तो हाथ ही कोई बात नहीं, शराब पियो चलेगा, मांस खाओ चलेगा।
वो तो बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है, बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है?
बुद्धि कंट्रोल से परे है, बुद्धि कंट्रोल, बुद्धि इंडिपेंडेंट है, बुद्धि कंट्रोल अंततः आत्मा का ही कंट्रोल है, मन बुद्धि अहंकार सब पर आत्मा कंट्रोल है। भगवान है, वैसे भगवान करते हैं, मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मुझसे बुद्धि आती है और मैं उसको चुरा लेता हूं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वहां पर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर बुद्धि का कंट्रोल स्वयं आत्मा करता है, आत्मा के द्वारा, न कि मन के द्वारा। मन सबॉर्डिनेट है बुद्धि का, मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकता है, मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकता है। हमारे संसार में जब आत्मा आता है तो चित्त यानी कॉन्शियसनेस, बाद में अहंकार आता है, बाद में बुद्धि आता है, बाद में मन आता है, बाद में ज्ञान इंद्रिय आते हैं, कर्म इंद्रिय आते हैं। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मन के बारे में उन्होंने बात किया है तो अर्जुन ने का भी मन बड़ा ही चंचल था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन मुझ पे लगाओ, मन बड़ा ही चंचल है जो जहाँ वहाँ भटकता रहता है, इसको सिर्फ मुझ पे लगाओ तब तुम आगे जाओगे, ऐसा।
तो मुझ में लगाओ वो बुद्धि हुआ, भगवान दिया, भगवान दिया। तो मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल, मई ए वो मन आ मनोबुद्धि नहीं हुई ऐसा, ये मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इस शरीर में बुद्धि है ही नहीं, जैसे कंप्यूटर में होता है वो क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क, उसमें कुछ लोड करना पड़ता है, वो ये छोटा बच्चा है उसके पास वो सिस्टम है, लेकिन आप उसको जो भाषा पढ़ाओगे पढ़ लेगा, हिंदी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, सब ग्रस्त, न कि जन्म से। जन्म के साथ मन था, जन्म के साथ उसके कामनाएं थी जो कर्म पहले किया है, लेकिन बुद्धि दी जाती है। बच्चे स्कूल में जाते हैं क्यों? बुद्धि प्राप्त करने के लिए। हाँ जी, क्या प्रश्न?
दंडवत प्रणाम। मैंने यहाँ पे भगवत क्लास में सुना था कि यहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे माया नहीं होती। तो अभी मैं
ठीक है, बोलो बोलो। हाँ कहते हैं कि कहा जाता है कि जहां पर कृष्ण रहते हैं वहां पर माया नहीं रहती है, लेकिन हम सुबह जप करते हैं तो कभी कभी नींद आने लगती है तो माया आ जाती है। तो माया तब आती है जब कृष्ण को भूल जाते हैं। जब कृष्ण को याद रखोगे तो माया नहीं आएगी। तो अभी हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन आ जाएगा जब कृष्ण का स्मरण हमेशा रहेगा तब नींद नहीं आएगा।
वही प्रैक्टिस कर रहा।
जोर से बोलो ना।
हरे कृष्ण। जैसे मैं 10-15 साल में पुराना भक्त हो जाऊंगा तो फिर तब भी नींद आएगी
क्या? क्या
बोले? 10-15 साल पुराने भक्त रहेंगे तब नींद नहीं आएगी
क्या? ये डिपेंड करता है कि आपका भक्ति कैसे चल रहा है। यदि आप शुद्ध भक्त हो जाओगे तो नींद नहीं आएगी। और शुद्ध भक्त बनने के लिए 15 साल जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक साल में हो जाएगा, एक दिन भी हो जाएगा।
धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण।
और शुद्ध भक्त नहीं बनोगे तो जीवन भर करते रहो तभी नींद आएगी। तो शुद्ध भक्त बनो, डेली देखो, 24 आवर देखते रहो कि हमारा मन कृष्ण में लगा है, सेवा में कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है।
हरे कृष्ण। जो भक्त लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं या दूर रहते हैं बहुत, जहाँ भक्तों का संग पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो वो कैसे भक्तों का संग करें? हरे कृष्ण।
प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ें। प्रभुपाद जी जो आए हैं अपने ग्रंथों के रूप में हैं। प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ें। वो माता जी का प्रश्न है पीछे। सुरेश, वो माता जी का प्रश्न है उधर पीछे। प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से, लेकिन प्रयास करना चाहिए जितना हो सके भक्तों का संगति हो सके, आना चाहिए। अन्य कार्यों में लगाते हैं समय, मंदिर में आने में क्यों नहीं? भक्त कभी बुलाइए अपने घर प्रसाद खिलाने के लिए, कभी कीर्तन वर्तन करने के लिए है, कभी मंदिर आ जाइए, प्रयास करना चाहिए।
शुद्ध भक्त बनने के लिए रास्ता बताइए प्रभु जी।
प्रभुपाद जी बता दिए रास्ता ना, भगवान का नाम जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमेशा प्रयास कीजिए यह देखने के लिए कि मेरा एक एक क्षण कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण के नाम जपने में, कृष्ण की सेवा करने में। जब सेवा भी कर रहे हैं, चाहे माला बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सेवा कर रहे हो उस समय यही समझ कि मैं कृष्ण के लिए माला बना रही हूँ। अब माला बना रही हैं संसार का हजार चीज सोच रही हैं, तो जो चीज सोचोगे वही माला के अंदर जाएगा। हालांकि भगवान पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पर उसका कम फायदा मिलेगा। भगवान के लिए भोजन बना रहे हो और हमेशा सोचते रहो कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ। आप सोच करके भगवान के लिए भोजन बनाओगे तब आपको वो सेवा के रूप में होगा, तब पता चलेगा आप सेवा भगवान के लिए कर रही हो। तो हमेशा मेन चीज है फोकस रखना, कृष्ण से उसका संबंध क्या है, कृष्ण से संबंधित है कि नहीं। तो नाम जप करना सबसे सरल चीज है। नाम जप कीजिए, कृष्ण का प्रसाद खाइए और जितना समय हो सके भगवान का सेवा करना चाहिए। सेवा करने से भगवान को हम समझ सकते हैं। ये शुद्ध भक्त बनने का सरल तरीका है, नाम जप करना और सेवा करना। हियर
हरे कृष्णा। प्रभु हम कभी कभी भगवान के लिए भोजन तैयारी करते हैं, उस समय भूल से नमक मिलाने के लिए भूल जाते हैं। तभी अगर हम बाद में कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाने के बाद में हम नमक लेते हैं, वो कृष्ण भगवान को चीटिंग किया जैसे होता कि नहीं?
खैर आप नमक डालना भूल गए थे, कहीं स्वीट राइस में नमक नहीं डाल दिए थे। देखिए नमक डालना भूल जाने का मतलब उस समय मन आपका भगवान में नहीं था, आज जब भोजन बना रहे थे तो मन कहीं और था, तब तो भूल गए ना नमक डाला ना है? तो पहला नंबर, खैर भगवान के लिए तो कोई बात नहीं है, भगवान तो भावग्रही जनार्दन, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। यदि मन भगवान में लगा हुआ और नमक न डालें तो भगवान नहीं कहेंगे नमक डाला है कि नहीं डाला है। जैसे बिजराइन, बिदुर की पत्नी जो थी, उनका मन कृष्ण में लगा था तो केला का छिलका खिला रही थी। मैं लंदन में यही क्लास दे रहा था और एक शब्द आया था परम पुरुष, भगवान परम पुरुष है। तो मैं अंतर बता रहा था कि सामान्य पुरुष और परम पुरुष में अंतर क्या है। हम लोग को कोई भोजन बनाकर खिलाए और नमक न डाला हो तो हम लोग क्या कहते हैं, टोकते हैं तो नहीं नमक नहीं डाला है, क्यों नमक नहीं डाला, हम नमक लेकर खाओ। लेकिन यदि उस व्यक्ति में प्रेम हो, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो तो खराब भी खाना है करो, इतना अच्छा आपने खाना बनाया, अब तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया था, अब कहते हैं ना, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम है। तो खिलाने वाले का जब प्रेम होगा, नमक डाला है या न डाला है बाह्य चीज है, खिलाने वाला का प्रेम होना चाहिए। भगवान जब खिलाने वाला में प्रेम होगा तो खाने में स्वाद आएगा। 56 भोग हो और खिलाने वाला का प्रेम न हो तो मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। हमने एक बार कोई व्यक्ति प्रसाद बनाया था, भोजन बनाया था, भक्तों को इनवाइट किया था खाने के लिए, और वो लहसुन प्याज डाल दिया था भूल करके। प्रभुपाद जी खा रहे थे और कहे बड़ा सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और भक्त लोग सोच रहे थे क्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं, इसमें लहसुन प्याज डाल दिया है, प्रभुपाद जी खा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक बनाया, अच्छा बनाया है। प्रभुपाद जी बताए बाद में कि गेस्ट को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, बेचारा प्रेम से बनाया था, जानता नहीं था, यही बॉम्बे का ही बात था, ये मनमोहन प्रभु कहते हैं प्राय इस बात को। एनीवे, तो जो खिलाने वाला प्रेमी हो तो खराब भी होगा तो कहते अच्छा वाह क्या बनाया अच्छा।
उसका प्रश्न ये था थोड़ा आगे और, कि अगर नमक नहीं डाला तो बाद में हम लोग खाएं प्रसाद तो उसमें नमक डाल के खाते तो इज चीटिंग, भगवान को तो नमक दिया नहीं।
नहीं वो चीटिंग नहीं है, भगवान भगवान उतना केयर नहीं ज्यादा करते हैं, चाहते हैं कि आप खुश रहो, यदि नमक है खुद रहो खुश रहो कोई बात नहीं। भगवान उसको अपराध नहीं लेते, अरे बदमाश हमको नमक नहीं खिलाया अपने नमक डाल खा रहा है, हमारे ऐसा ना सोचते हैं, आप खुश रहो। उनका एक प्रश्न उसके बाद, हाँ ये तमोगुणी पदार्थ है और तमोगुण में भजन नहीं होता है, भगवान तमोगुणी पदार्थ नहीं खाते हैं, भगवान भक्तों के द्वारा बनाया गया शुद्ध सतगुणी पदार्थ खाते हैं। यशोदा मैया लहसुन प्याज नहीं खिलाती थी, माखन मिश्री खिलाती थी, तो लहसुन प्याज ना खिलाए, और मांसाहार है एक तरह से। लहसुन प्याज को मैं कहीं पढ़ा था कि लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले जमाने में गोमेद जग हुआ करता था, तो एक गाय को काट करके और उसके मांस की आहुति दी जाती थी, और उसके बदले में उस गाय को नया देह मिलता था। तो एक ऋषि थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, गोमेद जग कर रहे थे, तो उनकी पत्नी जो थी वो दूसरा टुकड़ा मांस अलग रखती प्रसाद के रूप में, कि कैसा होता है, थोड़ा उनकी इच्छा हो गया। जब ऋषि आहुति डाल रहे थे और जब गाय पैदा हो गई
तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड के यहाँ पर गड्ढा रह गया, गाय के लेफ्ट में कि राइट में गड्ढा रहता है ना पेट में, हैं? लेफ्ट या राइट में गड्ढा रहता है, आप देखना गाय के लेफ्ट या राइट में गड्ढा रहता है। तो ऋषि को आश्चर्य हुआ, अरे इतना जब गाय को काटा गया तो गाय बिल्कुल ठीक थी, अब ये गड्ढा कैसे हो गया? इसका मतलब कुछ मांस जो है वो आहुति में नहीं डाला गया है। तो ऋषि जब ध्यान किए तो पता चला कि उनके धर्म पत्नी जी ने धर्म का काम किया है, वो थोड़ा छिपा करके रख दी है। तो बोला क्यों ऐसा किया? धर्म पत्नी क्या बोले? तो कहा जाओ इसको पृथ्वी को दान कर दो। तो उसने डाल दिया पृथ्वी में, तो वही हुआ लहसुन और प्याज। तो गाय का मांस है लहसुन प्याज, पौराणिक कथा है, मैं कहीं सुना था, मैं पढ़ा नहीं हूं। हम साउथ इंडियन नहीं है, हम लोग शास्त्र जो कहता है वो करते हैं। यस, फॉर योर क्वेश्चन
आई वांटेड टू से समथिंग।
You told that salt we can add later and feed the devotees. It is not aparad, isn't it?
No, I was saying Krishna wants to see his devotee happy.
Yeah.
That is first and foremost thing.
Yeah.
If devotee is happy, Krishna may not interfere anyway. If devotee is happy, putting little salt, Krishna is not too much in nitpicking.
Yeah, that is understandable. What I want to convey is, suppose I have made a mistake in cooking for Krishna,
then we should not eat.
I have to not to take.
Yes,
otherwise I feel guilty. Correct?
No? Yes,
that will be Indriya Trapti.
Yes, yes. Just like Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada used to say that once there was some mango, and my Guru Maharaj ate that mango, and later on he learned that this mango was for making offering to Krishna. And he ate bhoga, so he took a vow not to eat mango for his whole life. Good. Yes, इधर प्रश्न है।
प्रणाम प्रभु जी, मेरे को ये जानना है कि प्रकृति के तीनों गुणों से हम हट के हैं, ये कब हम जान सकते हैं? या प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, इससे परे हम कैसे हैं, कब हैं, किस सिचुएशन में हम जान सकते हैं, अपने को अनुमान लगा सकते हैं कि हम सतोगुण रजोगुण या तमोगुण से हट गए हैं, तीनों गुणों से परे?
जब आप अपने देह में चीटी काटोगे, जब दर्द नहीं होगा तो समझना कि प्रकृति गुण से परे हो। जब दर्द होगा ना,
भगवत गीता में भगवान ने बताया कि तीनों गुणों से जो ऊपर होता है वो मेरा भक्त होता है, और जो भगवान के धाम में आ सकता है।
बात सही है।
हाँ, तो
देखिए भक्तों का भी कैटेगरी है। जैसे जो नर्सरी स्कूल में जाता है लड़का पढ़ने के लिए, वो पढ़ने जाता है, और जो यूनिवर्सिटी में जाता है वो पढ़ने जाता है। दोनों पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक नर्सरी में एक यूनिवर्सिटी में अंतर इतना ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मैं भागवत गीता और भागवतम में पढ़ रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के अवतार हैं, और कृष्ण जी भी भगवान हैं, और गुरु, ये तीनों चीज में जब भी मैं पूजा करता हूँ, सबसे ज्यादा भाव जब भी मैं पूजा करता हूँ कृष्ण भगवान में आते, गुरु में और चैतन्य महाप्रभु में नहीं आते, तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा?
बहुत फर्क पड़ेगा, आप जरासंध बन जाओगे। जरासंध तो ब्राह्मणों का सम्मान करता था, लेकिन विष्णु का सम्मान नहीं करता था। वैसे ही ये चीज चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता है, केवल कृष्ण का सम्मान करता है। ओ ठीक है, लेकिन यदि कृष्ण को समझना है तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण को समझाने के लिए, उनके आने का प्रयोजन था कृष्ण को समझाने के लिए। तो कृष्ण को यथावत ही समझना है तो चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो गौड़ीय वैष्णव का संग करना चाहिए, बहुत जरूरी है।
तो फिर तीन भाग में गुरु, चैतन्य महाप्रभु और मन, तो तीन भाग में बढ़ जाएंगे?
नहीं नहीं नहीं, सब एक ही लाइन में है। जब कोई वस्तु एक लाइन में तो दिखाई पड़ता है, अभी कोई इधर होगा कि उधर होगा, कोई उधर होगा, तब दिखाई अलग तीन भाग में बटेगा ना, और सामने ही है तो तीनों सामने दिखाई पड़ता है। जो गुरु कहता है चैतन्य महाप्रभु वही किए हैं, कहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ये कहते हैं सब कुछ अगर मेरे पुत्र में आओ। चैतन्य महाप्रभु आए हैं बताने के लिए कैसे उनके शरण में जाना चाहिए, और गुरु वही करते हैं, बताते हैं, गुरु करते हैं।
तो पूजा किसकी करनी चाहिए?
आए?
पूजा सबसे पहले श्रद्धा एकदम मन भाव से, एकदम प्रेम भाव जो जिसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा भाव किन में अर्पित करना चाहिए?
गुरु में, कृष्ण में भाव अर्पित करना चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण में अपने को लगाना चाहिए। सभी मना कृष्ण पदार अरविंद, कृष्ण में लगाना चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के अनुसार। जैसे आप प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यदि कोई डायरेक्टली कृष्ण के पास जाना चाहे, कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं, कहते जाओ तुम हमारे गुरु के पास, गुरु के पास जाओ। जैसे आप प्रसादात नगति कुतोपी, यदि गुरु कृपा नहीं होगी तो कहीं गति नहीं है, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। पहले गुरु का कृपा प्राप्त करो, चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण का कृपा, तीनों गुरु हैं। कृष्ण भी गुरु हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु, वो भी गुरु हैं। गुरु का हमें सिखाया ना, कृष्ण सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि गुरु पादाश्रय, गुरु के शरण में जाओ, साधु के संग करो।
लेकिन मैं पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी गुरु है, चैतन्य महाप्रभु को भी मानता हूं।
अच्छा ये बताओ, पूजा आप अपने प्रसन्नता के लिए करते हो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए?
भागवत में, भागवतम में, और
जितना पूजा आप अपने खुशी के लिए करते हो कि भगवान की खुशी के लिए?
भगवान खुशी के लिए।
तो भगवान की खुशी इसी में है कि जो कहते हैं वो करो, वो कहते हैं कि गुरु पादाश्रय ग्रहण करो, वो कहते हैं कि मेरे पूजा से बढ़कर है गुरु का पूजा करना। भगवान शिव भी यही कहते हैं, आराधनापि सर्वेषां विष्णु आराधना परम, समस्त आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु का आराधना करना, और उसमें भी श्रेष्ठ है तदिया नाम समर्चनम, तदिया नाम ये विष्णु के जो भक्त लोग हैं उनका अर्चन करना गुरु का।
तो भगवान को बाद में पूजा करनी चाहिए?
हाँ, पहले गुरु करो। हम लोग डेली गुरु का वंदना पहले करते हैं, गुरु करोगे तो कृष्ण का आएगा अपने आप।
तो इसका मतलब गुरु बड़ा हुआ भगवान से,
ऐसा बड़ा छोटा के बातें नहीं है। आप गुरु को ही बड़ा मान लोगे, गुरु को आप बड़ा मान लो कोई बात नहीं, गुरु कहेगा कि मैं बड़ा नहीं हूं, भगवान बड़े हैं, तब किसको मानोगे?
जैसे
नहीं, आप गुरु को बड़ा माना और गुरु बोलता है भगवान बड़े हैं, क्या करोगे? आप गुरु को बड़ा माना ना, और गुरु बोलते हैं भगवान बड़े हैं, किसको बड़ा मानोगे?
भगवान को।
बस और कुछ मत करो, ये गुरु कहते हैं वही करो, ठीक है? और कोई प्रश्न? ऑल राइट, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कहते हैं गुरु गोविंद गौ खड़ो काको लागो,
भगवान जी खुद गए थे गुरु से।